أعوذ بالله من الشيطان الرجيم نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تدبر القرآن کے سلسلے میں آج ہم جس سورت پہ بات کریں گے وہ ہے سورت النازیات. اگر آپ نے پچھلی سورت کے نام پہ غور کیا ہو تو سورت نبا, اور نبا کہتے ہیں خبر کو. قرآن پاک میں 30واں پارہ جو ہے یہ سب سے زیادہ سورتوں پہ محیط ہے, 37 سورتیں ہیں ٹوٹل. اور آپ دیکھیں گے کہ ہر ایک سورت کو پڑھنے کے بعد آپ کو اس چیز کا بہت اچھی طرح اندازہ ہوگا کہ یہی سورت سب سے زیادہ خوبصورت ہے. اور یاد رکھیے کہ یہ اسی ماحول میں نازل ہو رہی ہیں کہ جہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت بالکل نئی نئی تھی. لوگ سوچتے تھے کہ یہ شخص پتہ نہیں کیا باتیں کرتا ہے, ہم تو جو لائف سٹائل اور جو طور طریقے اپنے باپ دادا کے وقت سے دیکھتے آئے تھے ہم اسی پہ مطمئن تھے. تو سورت نازیات جو ترتیب کے اعتبار سے 79 نمبر کی سورت ہے, اس کے آغاز میں موت کی ڈبکیوں کا تذکرہ ہے. موت ایک حقیقت ہے, بہت سارے لوگ موت کے لفظ سے ڈرتے ہیں, حالانکہ ڈرنے والے بھی دنیا سے چلے گئے اور ڈرانے والے بھی چلے گئے. اور سورت کا نام نازیات جو ہے اس سے مراد کیا کہ ڈوب کر رخ کھینچنے والے. بہت ساری اس کی مختلف تفاسیر ہے, لیکن جو سب سے ہلکی سی بات ہے وہ یہ ہے کہ وہ فرشتے جن کا کام اللہ تعالیٰ نے موت کے وقت روح کو نکالنا ہے, ان فرشتوں کا یہ ایک نام کہہ لیجیے, ان کی ایک صفت ہے. اور یہ سورت ترتیب میں بھی سورت نبا کے بعد ہے, اور نزول میں بھی یہ سورت اسی طرح نازل ہوئی تھی, اور بالکل مکہ کا جو ابتدائی دور تھا اس میں یہ نازل ہوئی. اس کا بھی موضوع قیامت اور مرنے کے بعد کی زندگی ہے, اور رسول کو جھٹلانے کا کیا نتیجہ ہوتا ہے. آئیے ہم پڑھتے ہوئے اس کو بالکل ہلکے پھلکے ذہن سے دیکھتے ہیں کہ میرا رب مجھ سے ان آیات میں کیا کہتا ہے, کیونکہ ہم تو اپنے عمل کے لیے پڑھنے والے ہیں نا. ہم اس میں بہت ساری بحثیں نہیں کریں گے, نہ ہم اس میں بہت زیادہ شان نزول پہ جائیں گے. اللہ سبحانہ وتعالیٰ فرماتے ہیں, بسم اللہ الرحمن الرحیم, والنازیات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات امرا. پانچ آیتوں پہ میں رکی ہوں. قسم ہے ان فرشتوں کی جو ڈوب کر کھینچتے ہیں کیا روح, اور آہستگی سے نکال کر لے جاتے ہیں, اور ان فرشتوں کی جو کائنات میں تیزی سے تیرتے پھرتے ہیں, پھر حکم بجا لانے میں سبقت کرتے ہیں, پھر اللہ کے حکم کے مطابق معاملات کا انتظام کرتے ہیں. اگر ہم یہاں رک کر تھوڑا سا غور و فکر کر لیں, یہ فرشتوں کی کچھ صفات ہیں. پہلی بات یہ, اور میرے خیال آپ میں سے جو سسٹرز میڈیکل کے پروفیشن سے منسلک ہیں ان کو تو یہ بات بہت ہی فائدہ دے گی, اور پہلے سے پتہ بھی ہوگی کہ ہمارے جسم کے اندر روح گندی ہوئی ہے. جیسے گندے ہوئے آٹے میں سے بال چھڑانا ہو, یا آپ کی چٹیا کے اندر کبھی ہاتھ سے آٹا یا گم لگ جائے اور آپ جب اس کو نکالتی ہیں تو پورا بال جب وہ جڑ تک کھنچنے لگتا ہے, ہمارے جسم کے اندر روح بھی اسی طرح پیروئی ہوئی ہے. زندگی بھر یہ جسم اس روح کا بوجھ اٹھا کے پھرتا ہے, جیسے اس وقت میرے اپنے اندر روح ہے, آپ کے بھی اندر ہے, لیکن ہمیں محسوس بھی نہیں ہو رہا. یہ بالکل ایسے ہے جیسے اس مائکرو فون کے اندر بجلی چل رہی ہے لیکن ہمیں احساس نہیں ہو رہا, لیکن اس میں سے آواز کا آنا یہ بتا رہا ہے کیا کہ اس کے اندر روح ہے. معذرت کے ساتھ ہمارے کلچر میں روحانی معالج کا نام کافی بدنام ہے. عامل بابا روحانی معالج, ایک ہفتے میں سارے کام ہو جائیں گے, جن بھوت بھگا دیں گے. لیکن یاد رکھیے, پچھلی صورت میں بھی ہم نے غور و فکر کیا تھا کہ اصل میں ہمارا جسم دو چیزوں سے مل کے بنا ہے. یہ جسم ہے جو آپ میرا اور میں آپ کا دیکھتے ہیں, اور باقی دوسری چیز روح ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کا جب پتلا پیدا کیا تو اس کے بعد ان میں اپنی طرف سے روح پھونک دی تھی. روح کے پھونکنے کی دیر تھی کہ آدم علیہ السلام حرکت میں آ گئے, اور آج میڈیکل نے بھی اس چیز کی تصدیق کی, اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے 1400 سال پہلے سے یہ بات پتہ ہے کہ ماں کے پیٹ میں جب 4 مہینے کا فیٹس ہوتا ہے تو فرشتہ آتا ہے اور اس میں روح ڈال جاتا ہے. حالانکہ وہ ایک زندہ سیل ہوتا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے, لیکن روح پھونکتی ہے جب ماں کے پیٹ میں, نہیں پتہ چلتا. प्रेग्नेंट औरत खुद ही वैसे ही इतने प्रॉब्लम्स में होती है कि उसको एहसास नहीं होता कि आज मेरे जिस्म के अंदर एक नई रूह आ गई है। इसी तरह जब हम इस दुनिया से जाएंगे उस वक्त हमारी रूहों की दो कैफियत होंगी। बास कहते हैं वद नाजियाती गरका में फाजिर और काफिर। बद इंसान जिसका दिल बहुत दुनिया से लगा हुआ था उसकी रूह के निकलने की बात है। हदीस में आता है कि काफिर की रूह जिस्म में छुपती है, वो निकलना नहीं चाहती। क्यों? क्योंकि उसके जिस्म ने उससे अच्छे काम नहीं कराए होते। या ऐसी है कि जो बच्चा वक्त पे होमवर्क ना करे, सारा साल जो होमवर्क दिया जाता है वो ना करे, लेकिन फिर बाद में एग्जाम के दिनों में छुपता फिरे। और ऐसे लोगों की रूह जब जिस्म से निकलती है तो बहुत तकलीफ़ की कैफियत होती है। यानी आज के इस पूरे सबक में से ये सबसे स्ट्रांग बात है। मौत एक बहुत बड़ी हकीकत है। जिसका दिल दुनिया से जितना अटैच होगा उसकी मौत के वक्त कैफियत उतनी सख्त होगी। इसके बरक्स अगली आयत को देख लीजिए, वन नाशिताती नाश्ता। कसम है उन फरिश्तों की जो डूब डूब कर खींचते हैं और आहिस्तगी से निकाल कर ले जाते हैं। बास कहते हैं कि डूब कर खींचना सकरात है, मौत से कुछ घंटे पहले शुरू हो जाती है कुछ लोगों में, कुछ में कई के दिन तक रहती है, और किसी की तो ऐसे निकल जाती है कि जैसे खुशबू की शीशी खुली रह जाए। लेकिन हकीकत है कि मौत दो तरह से आती है। कुल्लु नफ्सिन जायकतुल मौत, हर नफ्स ने मौत का जायका चखना है। आपने कई वीडियोस देखी होंगी, मुसल्ले पे खड़ा एक शख्स है और एकदम गिरा और जान दे दी, किसी की सजदे की हालत में चली गई, और इसी तरह किसी की एक्सीडेंट में चली गई। लेकिन जब मौत आती है ना, तो आम तौर पे कायदा और कुलिया ये है कि जितना इंसान दुनियादार और गुनाहगार होगा उतनी उसकी जान मुख्तलिफ मुश्किल से जाती है। बहुत प्यारी अहादीस हैं जिसका सिर्फ खुलासा इस वक्त दे देती हूँ कि फाजिर, फाजिर कहते हैं गुनाहगार, सिनर, और काफिर कहते हैं कुफर वाला, डिनायर, जिसके सामने हक आया और उसने उसको ना माना। तो उसकी रूह जब जिस्म से निकलती है या मलकुल मौत आते हैं तो उसकी रूह को निकालना चाहते हैं। जिस्म के 360 जोड़ हैं, जॉइंट्स, हर जोड़ के ऊपर सख्ती की जाती है, और रूह जिस्म में छुपती फिरती है, उसका दिल नहीं करता बाहर आऊँ। और जब सारे जिस्म से निकाली जाती है तो यहाँ आके ये खलक है ना, हलक, इधर अटक जाती है, और यहाँ से फिर मलकुल मौत जो है वो हाथ बढ़ाकर उसको खींचते हैं। जो आप कहते हैं मौत की हिचकियाँ, और जो भी आपने किसी मरते हुए शख्स को देखा होगा, ये वो आखिरी कैफियत है, और वो फिर उसको खींचते हैं। और जब वो रूह बाहर आती है तो बहुत सारी रिवायत का खुलासा ये है कि वो उस इंसान को बद्दुआ देती है, कहती है कि मुझे थोड़े दिन के लिए अल्लाह ने तेरे जिस्म में डाला था, लेकिन तूने मेरी हिफाजत नहीं की, तूने मुझसे वो नहीं काम करवाया जो करना चाहिए था। आज मैं भी तुझे ये बद्दुआ देती हूँ कि जो तूने मेरे साथ किया अब तेरे साथ यही हो। और फरमाया कि इतनी तकलीफ़ होती है कि एक नेकेड बॉडी पे 500 तलवारें इकट्ठी चला दी जाएं, उतनी तकलीफ़ मरते वक्त उस शख्स को होती है। और मौत का जायका कई सालों के बाद भी, कहते हैं अगर कोई पूछा दे उससे, बस बनी इसराइली रिवायात में आता है कि 500 साल के बाद किसी शख्स से पूछा जो मर चुका था तो कहा आज तक मौत का जायका मुंह में है। इसके बरक्स वन नाशिताती नाश्ता, मोमिन की रूह, हमें तो उसकी बात करनी है। अल्लाह के हुक्म से हम कुफर पे नहीं हैं, और अल्लाह के हुक्म से हम गुनाहों से अपने आप को हर मुमकिन बचाते हैं। जो कमी बेशी अल्लाह ताला माफ़ कर दे, और अल्लाह ताला हमारे दिन रात हर दिन पिछले से बेहतर कर दे। फरमाया कि जब मोमिन की मौत का वक्त आता है, इसी से ऑपोजिट है जो बता रही हूँ, फरमाया कि जब एक इंसान की मौत का वक्त करीब आता है तो उसके पास फरिश्ते आते हैं। बस रिवायत में आता है कि चार फरिश्तों की आवाज़ें वो सुनता है, आपस में बातचीत कर रहे हैं। एक कहता है कि इस शख्स ने जितना खाना था खा लिया, अभी भी जिंदा है। दूसरा कहता है हाँ, मुझे तो अल्लाह ने इसके पीने के घूंट गिनने पे लगाया हुआ था, जितने इसने पीने थे पी लिए हैं। और इसी तरह तीसरा कहता है जितने कदम इसने चलने थे चल लिए हैं। और चौथा कहते हैं इसके जितने अमल जाने थे आगे जा चुके हैं, ये फिर भी जिंदा है। फरिश्तों तक को नहीं पता कि अब इसकी मौत का वक्त करीब है, और इतने में अल्लाह के हुक्म से उसके दुनिया से जाने का वक्त आता है। इतनी खुशी से मोमिन की रूह जो है उसके जिस्म से इतने प्यार से निकलती है। आपने फरमाया जैसे खुशबू की शीशी, परफ्यूम बॉटल खुली छुट जाए तो क्या होता है, भी खुशबू है वो उड़ जाएगी और पीछे एक शीशे की बोतल रहेगी। फरमाया मोमिन के साथ भी ऐसे होता है, बिल्कुल तकलीफ़ नहीं होती। शहीद के बारे में तो आता है सिर्फ एक चुटकी के काटने की तकलीफ, और आपकी लैंग्वेज में कहती हूँ कि इंजेक्शन की सुई सिर्फ चुभने की देर, उसके बाद पेन नहीं होता, और वो खुशियाँ मनाती भी उछलती कूदती निकल जाती है। क्यों? उसको तो इंतज़ार है अपने रब से मिलने का। इसी बारे में इंशाल्लाह सूरह फजर की आखिरी आयतों में आप इंजॉय करेंगे कि मोमिन की रूह जब निकलती है तो क्या होता है, लेकिन चूँकि उसको आगे अच्छी चीज़ें नज़र आ रही हैं तो वो वहाँ निकल कर उस शख्स को दुआ देती है कि बहुत शुक्रिया तुम्हारा, कुछ अरसे के लिए अल्लाह ने मुझे तुम्हारे जिस्म में डाला था और तुमने मुझसे बहुत अच्छे काम लिए, मैं तुम्हें दुआ देती हूँ कि अल्लाह तुम्हारी हिफाजत करे। उसके बाद फिर उसकी रूह को जन्नत के कफन में लपेटा जाता है, खुशबुएं आती हैं, आसमानों पे उसको लेके जाया जाता है, हर आसमान के फरिश्ते उसके साथ जाते हैं। मैं इस पर एक रिकमेंड करूँगी आपको लेक्चर, जर्नी ऑफ द सोल, रूह का सफ़र, सूरत अल अराफ की कुछ आयात है, उस पर किया था, अलग से लेक्चर भी बना था, कभी मौका मिले तो आप सुन लें पूरा 1, 2, 3 करके एक एक चीज़ में, कि मरने से लेकर दफनाने कफनाने और इसके बाद कब्र में जाने के बाद मुर्दे में क्या होता है। यकीन करें डरने वाली कोई बात नहीं है, ये वो खौफनाक बुक नहीं है कि मरने का मंजर और मौत का मंजर और मरने के बाद क्या होगा। कितने लोगों ने खुदकुशी की है सिर्फ उस एक बुक की वजह से, क्योंकि उसमें इतना डरा दिया गया और इतनी ज़यीफ़ रिवायतें। हालांकि यकीन करें ये मौजू सुनने में जितना खौफनाक लगता है, हदीस में आता है कि दुनिया की सबसे खूबसूरत चीज़ मोमिन की मौत है, मोमिन मुंतज़िर होता है। वजह इसलिए कि मन अहब लिका अल्लाही अहब अल्लाह लिका हो, जो अल्लाह से मिलना चाहता है उससे मोहब्बत करता है, अल्लाह भी उससे मिलने की मोहब्बत करता है। क्यों? क्योंकि उसने तैयारी की होती है। मैं आपको एक छोटी सी मिसाल देकर आगे ले चलती हूँ, इतना ही काफ़ी है इस मौजू पे। आपने तैयारी की है अपने मेहमानों के आने की, सारा दिन लगा के घर साफ़ किया, खाना पकाया, खुद साफ़ सुथरे हुए, अब बताइए आप किस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं कि मेहमान आ जाए। दरवाज़ा भी बार बार चेक करते हैं, अब किधर अब किधर, क्योंकि उम्मीद है, तैयारी पूरी है, बल्कि खाना अब ख़राब हो रहा है और बच्चे बेचैन हो रहे हैं और मियाँ साहब को डांट पड़ रही है आप क्यों चख रहे हैं, अभी तो मेहमानों ने देखना था फिर आप खाते। लेकिन याद रखिए जब तैयारी की होती है ना तो दुनिया का बड़े से बड़ा इम्तिहान मुश्किल नहीं लगता, खाना पकाया हुआ तो कोई बड़ी बात नहीं है। मोमिन ने हर चीज़ साथ साथ की होती है, बहुत ऑर्गेनाइज्ड होता है, डिसिप्लिन्ड होता है, वक्त से पहले काम करता है, वो मौत के फरिश्ते का इस्तकबाल एक गेस्ट ऑफ ऑनर के तौर पे करता है और वो खुश हो जाता है, और वो उसको देखकर खुश और वो उसको देखकर खुश। दुआ कीजिए जब हमारी मौत आए तो हमारी रूह भी खुशी के साथ जिस्म से निकले। फिर फरमाए बस साबे हाथी सबहा, और इन फरिश्तों की जो कायनात में तेज़ी से तैरते फिरते हैं, इस पे गौर कीजिए, बहुत सारी फरिश्तों की खूबियाँ कुरान पाक में मजकूर है। मेरे आपके लिए इसमें अमल की क्या बात है कि जिस तरह फरिश्ते स्विफ्ट हैं, ऐसे ऐसे जैसे आप कहते हैं मिनटों में तैयार, इधर अल्लाह का हुक्म आता है और वो तैयार हो जाते हैं। कुरान पाक में आगे भी आता है यफ़लूना मा युमरून, वो काम करते हैं जो उनको हुक्म दिया जाता है। हालांकि आप देखिए फरिश्तों के लिए ना जन्नत के वादे हैं, ना फरिश्तों को अल्लाह ताला ने कोई हिसाब किताब के उलझनों में डालना है, लेकिन और फरिश्ते हैं भी कितने बड़े, सिर्फ जिब्राइल को अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़िंदगी में 3 या 2 दफ़ा देखा, और जब पहली दफ़ा देखा तो आपको लगा पूरे आसमान पे जिब्राइल है, मोतियों के उनके पार हैं, याकूत के अंदर। यदि सिर्फ जिब्राइल की डिस्क्रिप्शन आप पढ़े ना तो आपके जहन में वो कोई अलिफ लैलवी किरदार आ जाता है जिसमें डायमंड्स जुड़े हुए हैं और जिसमें पर्ल्स हैं और चमक निकल रही है और न जाने क्या कुछ है, इतने हसीन है जिब्राइल और बाकी फरिश्ते भी हैं। लेकिन इतने बड़े इतने खूबसूरत होने के बावजूद भी अल्लाह का हुक्म सुनकर फौरन उठ पड़ते हैं, खुद से सवाल करते हैं, गौर का नुक्ता है मैं अल्लाह का हुक्म सुनकर क्या करती हूँ। मसलन हय्या अलैस्सलाह, अल्लाह ताला कहते हैं नमाज के लिए आओ, अस्सलाह तो खैरुम मिनन नौम, फजर की अजान में सुनते हैं नमाज नींद से बेहतर है, क्या मैं बस साबे हाथी सबहा की कैफियत में आ जाती हूँ। तेज़ी से हम तस्बीह भी पढ़ रहे होते हैं ना तो सात बातें कर रहे होते हैं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, और बस बातें करते वैसे लगता है गिबतें गिन रही हैं, एक ही दूसरी तीसरी चौथी। फरिश्ते अल्लाह की तस्बीह भी करते हैं और उसके हुक्म को सुनकर तेज़ी से एक्शन में आ जाते हैं, अल्लाह ताला हमारे लिए भी ऐसा करें। मैं जब इस आयत को पढ़ती हूँ ना मेरे जहन में एम्बुलेंस आ जाती है, अल्लाह ना करे किसी को भी इत्तफाक हो, लेकिन आप देखिए कि एम्बुलेंस वाले शायद दुनिया में सबसे ज़्यादा हुक्म के इंतज़ार में होंगे कि फ़ौरन भागना है क्योंकि ज़िंदगी मौत का मामला है। बस अल्लाह से दुआ कीजिए कि उसकी बात सुनकर इफ्स एंड बट्स में ना पढ़ें। चलें प्रोज एंड कॉन देखते हैं, इसका क्या नुकसान है क्या फ़ायदा। लेट मी आस्क टू माई फ्रेंड, मैं अपनी दोस्त से ज़रा मशवरा कर लूँ, ज़रा मियाँ साहब से इजाज़त ले लूँ। नहीं, बस साहब हाथी सबका, इसलिए कि जब हमारी मौत का वक्त आना है ना, उस वक्त किसी से हम मशवरा नहीं कर पाएंगे और हमें जाना पड़ेगा। फिर देखिए फसाबिकाती सबका, और सबकत करते हैं सबकत करना। असल दुनिया में मुकाबला इस चीज़ में होना चाहिए, कॉम्पिटिशन की प्लेस है दुनिया। आज कहते हैं हर एक एवरी वन इज़ कम्पीटिंग टू अदर्स, कम्पीट करें किस में करें, इसी बारे में हम पढ़ेंगे। व फीज़ा लिख फल यतना फसिल मुतनाफिसोन, किसी ने अगर भाग दौड़ करनी है, एक से दूसरे के ऊपर जाना है, किसी को बीट करना है, तो इस जन्नत को पाने के लिए करें। अल्लाह ताला ने उसके बहुत सारे मुकाम रखे हैं। और फरिश्तों की अगली खूबी, फल मुदब्बिरात अमरा, और वो अल्लाह के हुक्मों से मामलात का इंतज़ाम चलाते हैं, प्लानिंग करना। फरिश्ते जान निकालने के फौरन बाद प्रोसेस में लग जाते हैं, जैसे हमारे यहाँ भी यही होता है ना, अब लोगों को बुलाएं, कफन नहलाने वाले का इंतज़ाम करें, फिर कहाँ दफन करना है रिश्तेदारों को इन्फॉर्म करें, खाना क्या होगा, बहुत सारे काम शुरू होते हैं। फरिश्ते किसी की रूह निकलने के बाद फल मुदब्बिरात अमरा तदबीर करते हैं, मैनेजमेंट करते हैं, वो देखते हैं इसकी रूह को कहाँ जाना है, ये जीन के काबिल है किसी जीन के, ये अल्लाह के दोस्त की रूह है या अल्लाह के दुश्मन की रूह है। तो इससे क्या पता चलता है कि हमें भी अपने कामों को प्लानिंग के साथ करना चाहिए। जो कौमें ऑर्गेनाइज्ड हैं आप उनको उरूज पे देखेंगे, जब तक हम मुसलमान ऑर्गेनाइज थे हम भी उरूज पे थे। 800 साल काम करके अब 400 साल हो गए सोए हुए हम। हमारे इन बच्चों ने जो आजकल पल रहे हैं, उन्होंने तो इस्लाम की का अरूज देखा ही नहीं। वी आर एम्बेरस्ड मुस्लिम, वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम, क्योंकि हमने कोई कारनामा इस्लाम का तो देखा ही नहीं है। मैं आपको दावत दूंगी कि आप नबी सल्लम के दौर से लेकर कम अज़ कम 1000 साल तक की हिस्ट्री पढ़ें। ये 14 ईयर चल रहा है ना, 1439 है, ये 400 साल निकाल दीजिए, पिछला 1000 दौरे अकबरी तक हम दुनिया पे ऐसे सूरज की तरह चमक रहे थे, लोग हमें फॉलो करते थे। अरब शहजादों के कपड़े गोरे पहनते थे, शहजादियों के निकाब और उनके वेल पहन पहन कर शहजादियाँ महल्लात में देखती थी। वो मुसलमानों को कॉपी करते थे, जिस तरह आप कह लीजिए कि देवर इम्प्रेस फ्रॉम देम, उन्हीं का तौर तरीका। और हर जगह मुसलमानों ने दुनिया को खैर दी, वो सोशल सिस्टम दिया जो आज तो उसका कुछ अशर अशीर भी नहीं है, इकोनॉमिक सिस्टम वो दिया कि पूरी दुनिया में कोई भूखा ना रहा। ये सब ख़त्म होगी जो आज के दौर की ये कॉलोनी सिस्टम है। तो दुआ कीजिए कि लाज हमें भी जगा दे। इस वक्त हम सोए हुए हैं, मुसलमान मरे नहीं हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और इस्लाम कभी मखलूब नहीं होता, लेकिन आज हम क्यों मखलूब हैं? बिकॉज हम प्लानिंग नहीं करते, हम सुस्त हो गए, हम आराम तलब हो गए। अल्लाह ताला अगली आयतों में क़यामत का मंजर दिखाते हैं, देखिएगा। यौम तरजफुर राजिफा, जिस रोज़ हला मारेगा जलजले का झटका, तत्बौहर वादिफा, और इसके पीछे एक और झटका पड़ेगा, कुलूबुई यौम इज़िम वाजिफा, कुछ दिल होल रहे होंगे उस दिन जो खौफ से कांप रहे होंगे, अब सारुहा खाशिया, और उनकी निगाहें सहमी होंगी। इमेजिनेशन में लाएं, कभी टीवी पे ही कोई क्लिप क्यों ना देखा हो किसी हरिकेन के आने का, पिछले कई साल पहले सुनामी आई थी, कभी आज भी आप वीडियो पे सिर्फ यूट्यूब पे सुनामी लिख कर देखें, कभी आप अमेरिका के किसी कैटरीना रीटा और इस तरह के हरिकेन्स की मंजर देखें, जब लोग दूर से समंदरी लहरों को आता देखते हैं तो उनकी आंखें खुल रह जाती हैं, जब बिल्डिंग्स गिरती हैं, एक जलजला क्या आता है, कितने लोगों के दिल हिल जाते हैं। और आप देखते हैं कि दुनिया में जलजला कितना लंबा होता है, फ्यू सेकेंड्स, और रिक्टर स्केल पर उसकी क्या शिद्दत है, 6, 7, 8, वहाँ क्या होगा, एक के बाद एक झटके पे झटका। इमेजिन कीजिए उस दिन क्या हाल होगा। क़यामत का तस्करा और पूरा 30वां पारा क़यामत की याद दिलाता है। देखिए किसी की भी जब मौत आती है ना, उसकी क़यामत शुरू हो जाती है। हदीस में आता है कि मम मात फ़कद क़ामत क़यामत हो, जो मर गया उसकी क़यामत कायम हो गई। लेकिन जब पूरी इंसानियत पे क़यामत आएगी, पहाड़ों पे, दरियाओं पे, समंदरों पे और इंसान पे, तो उस वक्त कितनी कैफियत बुरी होगी। अल्लाह ताला हम सबको उस वक़्त अमन और सुकून से रखे। वो लोग उस दिन भी अमन में होंगे जो दुनिया में मुतमईन थे, जो कॉन्टेंट थे, जो दुनिया में अल्लाह के दिए हुए रास्तों पे चल रहे थे, और अल्लाह ताला हमें इसी की तौफीक दे। और जब क़यामत आएगी तो लोगों की हैरत क्या है, जिसका तذکرہ अगली आयतों में देखिएगा, यकूलूना इन्ना लमरदूदून फिल हाफिर, वो कहेंगे क्या वाकई हम पलटा कर वापस ले जाएंगे। मक्का वालों का सबसे बड़ा कन्फ्यूजन क्या था अल्लाह के नबी की दावत के मामले में, कि हाउ इज़ इट पॉसिबल कि हम दोबारा जिंदा हों। देखिए, आपने कईयों को मरते देखा होगा ना हॉस्पिटल्स में, आज तक आपने भी नहीं किसी को जिंदा होते देखा, सच है ना? इसी तरह सोचिए, अगर हमारा ये बिलीफ ना होता, हम मुस्लिम घर में ना पैदा हुए होते। मसलन आप किसी पेशेंट का नाम लें, पीटर, आपके सामने सिसक सिसक के मर गया, और मरने से पहले आपने अंदर मशीनों में देख लिया उसका सारा जिस्म कैंसर से ख़त्म हो चुका था, अंदर एक पत्थर बन चुकी थी, हर उस बढ़ के एक दूसरे से मिल चुका था। अगर बंदा बहुत थिंक टैंक हो ना, तो वो कहेगा ये अब कभी ज़िंदा नहीं होगा। साइंस की तरक्की के बाद दो कैफियत होती हैं, या तो बंदा अल्लाह के बहुत करीब हो जाता है, और या फिर बहुत ही दूर हो जाता है। वो हर चीज़ को साइंटिफिकल फैक्ट्स में लेता है। बहुत सारे लोग आज आपके इस मुल्क में भी मरने के बाद जीने को क्यों नहीं मानते, यही वजह कि कैसे मुमकिन है, उसके तो गुर्दे भी ख़त्म हो गए, उसके तो फेफड़े भी नहीं काम कर रहे, उसका तो जिस्म पूरा अंदर से बिल्कुल डल हो गया था। अल्लाह ताला कहते हैं आइज़ा कुन्न इज़ामन नखीरा, उनका ये जुमला, क्या हम जब खोखली हड्डियाँ बन चुके होंगे, यानी हमारी ये खोखली हड्डियाँ जो मट्टी में जाकर मट्टी बनती हैं, क्या इनमें दोबारा ज़िंदगी आएगी। कालू तिल का इज़न कर रतन खासिरा, अच्छा अगर ये हो गया तो ये तो बड़े घाटे की बात है, यानी है तो नहीं मुमकिन, लेकिन हुआ तो फिर बड़ा नुकसान होगा। फरमाया फ़ाइन नमा ही जजरा तुम वाहिदा, ये तो एक डांट होगी। फ़ैज़ा हम बिसाखिरा, और बस वो खुले मैदान में आ जाएंगे। अब सबको मन ज़हनी तौर पर क़्यामत के मैदान में ले जाना है। आप देखिए इतना पुरज़ोर अंदाज है इन सूरतों का, मैं आप सबको दुआ दूंगी। अब बाकी ज़िंदगी में बाकी काम आप अपनी मर्ज़ी से करें, लेकिन अल्लाह आपको कुरान का ऐसा फहम दे दे कि आप इसको अरबी में सुनकर उर्दू में पढ़ें। मेरे सामने अरबी टेक्स्ट खुला हुआ है, मुझे तर्जमे वाले कुरान से पढ़ने का मज़ा ही नहीं आता। कोई एक सिस्टर जो यहाँ बैठी हो और उनको उर्दू ना आती हो, क्या वो डिक्शनरी की मदद से मेरा ये लेक्चर सुन सकती हैं? कितनी देर बैठेंगी? और अगर आपको मेरे हर जुमले को पहले उर्दू और इंग्लिश डिक्शनरी से देखना हो, तो आपका दिल कितना लगेगा? ये वजह क्या आज हमारा और हमारी नस्लों का कुरान की तिलावत में दिल नहीं लगता? और बच्चे कहते हैं, मुझे एक माँ ने कहा, मामा आप मुझे क्यों फोर्स करती हैं कि मैं कुरान पढ़ूँ, इससे तो बेटर है आप मुझे कोई इस्लामिक स्टोरी दे दें, मैं वो पढ़ लूँ, मुझे समझ तो आएगी। और इट्स ट्रू, मैंने कहा सिस्टर बच्चा गलत नहीं कह रहा, आप ज़रा सोचिए तो सही, आप कितनी देर कोई चीज़ सुनती हैं जब आपको समझ नहीं आती। तो बस ये दुआ करके आगे बढ़ते हैं कि अल्लाह इतना मौका और मोहलत दे कि अरबी ज़ुबान का कुरान पढ़ूँ, अरबी ज़ुबान का कुरान पढ़ूँ। और आप देखेंगे, आप नेक्स्ट टाइम अपने सामने कुरान खोल कर लाएँ, आप कभी भी हैं तो खोलेंगे तो आप ज़्यादा इंजॉय करेंगे, क्योंकि उससे आपके जहनों पे एक नक्शा बनता है। और ये कभी नहीं हो सकता कि हमारे किसी के फ़ोन में कुरान पाक का नुस्खा ना हो, आज तो इतना सहूलत वाला मामला हो गया। लेकिन बात यह है कि अल्लाह ताला कहते हैं कि हमारे लिए आसान है। आप देखिए कि कोई ये कह सकता है कि अल्लाह मरने के बाद कैसे ज़िंदा करेगा? मिसाल है कि आपसे, जैसे मैंने खुद कहा कि मरता देख कर आप सोचते हैं अब ये दोबारा कैसे ज़िंदा होगा, तो एक क्वेश्चन है, पहली दफ़ा कैसे पैदा हुए थे? मेरा लिए दुनिया का सबसे बड़ा एडवेंचर और अनबिलीवेबल इन इवेंट एक बच्चे का 9 महीने में डिफरेंट फॉर्म्स बदलकर दुनिया में आना है। आप देखेंगे कि कुरान ने कितने 100 साल पहले वो खबरें दे दी जो अब आप अपनी पढ़ने के दौरान देखते और सुनते होंगे। तो याद रखिए, इन्नल्लाह अला कुल्ली शयइन कदीर। बस इस वक्त तसव्वुर की आंख से अपने आप को मैदान-ए-महशर में सोचिए। अब सवाल पैदा होता है कि हम मैदान हशर में तो जाएंगे, वहाँ होगा क्या? अब अगले हिस्से में सूरत के एक किरदार, एक करेक्टर फिरौन, खुद को बड़ा समझने वाला, खुदाई का दावेदार, आइए ज़रा पढ़ते हैं, फिर मैं इंशाल्लाह इन दोनों का रब जोड़ूंगी, क्योंकि बज़ाहिर समझ नहीं आता कि एकदम क़यामत, मौत और इसके तस्करे में मूसा और फिरौन का तस्करा क्यों आ गया। तो याद रखिए, फिरौन अपने वक्त का मुतकब्बिर शख्स था, प्राउड था, खुद को बहुत बड़ा समझता था, कहता था मैं तुम्हारा गॉड हूँ, आई एम योर गॉड। अल्लाह ताला कहते हैं आओ तुम्हें दिखाएं उसकी बेबसी, हल अता का हदीस हो मूसा, क्या आपके पास मूसा अलैहिस्सलाम की खबर आई है? कितना प्यारा अंदाज है, जैसे हम फ़ोन करके किसी को कहते हैं तुमने कुछ सुना है, डू यू नो दिस, क्या सुना क्या? इस नादाहु रब्बुहु बिल वादिल मुकद्दसी तुवा, जब इसने अपने रब को पुकारा जबकि वो तुवा की मुकद्दस वादी में था। ये कब हुआ? जब मूसा अलैहिस्सलाम मदियन से मिस्र आ रहे थे। बीवी साथ थी और उम्मीद से थी, बच्चे भी होंगे। और मूसा तो गए थे आग लेने कि चलो कुछ आग ले आऊँ, थोड़ा गर्मी का इंतज़ाम हो सकता है कुछ खाना भी मिल जाए। लेकिन जब वहाँ गए तो अल्लाह ने पुकारा, इन्नी अन अल्लाह। सूरह ताहा में आप पढ़ें ये मुकालमा, सो ब्यूटीफुल डायलॉग है। ऐसा लगता है अल्लाह और मूसा सामने आमने और बात कर रहे हैं। तो वहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत मिली। टारगेट क्या मिला? इज़हब इला फिरौना इन्नहु तगा, जाओ फिरौन के पास क्योंकि वो सरकश हो गया। ट्रांसग्रेशन, बहुत खुद को बड़ा समझता है। अब यहाँ से थोड़े से दावा टेक्स्ट समझ आ रहे हैं। चूँकि हम सब भी उम्मते मुस्लिम होने के नाते इस बात के मुकल्लफ हैं, इस बात की जिम्मेदारी अल्लाह ने दी है कि हम दूसरों को इस्लाम की तरफ इनवाइट करें, तो यहाँ बहुत खूबसूरत पॉइंट्स हैं। क्या करें? फकुल हल्लका इला अंतजक्का, और इसे कह दो क्या तू इसके लिए तैयार है कि तू पाकीज़गी इख्तियार करे? यानी जब आप किसी को दावा दें, यानी यो किसी को इस्लाम की तरफ इनवाइट करें, तो उसको सबसे पहले ये एहसास दिलाएं इस्लाम इज़ वेरी प्योर रिलीजन। इसमें ज़ुबान पे भी प्योर आता है, पेट में भी प्योर जाता है, रिश्तों में भी पाकी होती है। ये जितनी चीज़ें इस्लाम में हराम है आप देखिए, तो वो असल में हमारी अक़ल, हमारी हमारे पेट की सफाई के लिए है ना। तो उसको एहसास दिलाए दिखाएं कि क्या तुम ला इलाहा इल्लल्लाह कहकर अपने दिल दिमाग को पाक करना चाहते हो? वहदिया का इला रब्बिक का फताहशा, और उसको बता दो कि मैं तुझे तेरे रब का रास्ता बताऊंगा। शायद कि तेरे अंदर उसका खौफ पैदा हो जाए। क्या पता चली दूसरी बात? जब लोगों से दीन की बात करें, सिर्फ और सिर्फ और सिर्फ अल्लाह के टॉपिक पे बात करें, ना चार बीवियों की बात करें, ना नेल पॉलिश लगाने की बात करें, ना फिकी बातें करें। आज हम मुसलमानों में ये तबलीग नहीं है, गैर मुस्लिमों को हम क्या करेंगे? याद रखिए, जिसका दिल रब से जुड़ गया उसको सब आ जाएगा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें यहाँ कुछ मसले मसाइल पे बात करनी चाहिए, डूज एंड डोंट्स पे बात करनी चाहिए, कोई फ़ायदा नहीं होगा। अगर अल्लाह का तारुफ आ जाए उसकी हर बात समझ आ जाती है। तो सबसे बड़ी चीज़ क्या है? आप अपने बच्चों में भी ये अंदाज़ इख्तियार करें, उनको अल्लाह से मोहब्बत दिलाएं। अल्लाह का खौफ आ गया, बाकी सब काम खुद ही आ जाएंगे। और इस दौरान करो क्या? फ़राहुल आयतल कुबरा, फिर मूसा ने फिरौन के पास जाकर उसको बड़ी निशानी दिखाई। अल्लाह ताला ने मूसा अलैहिस्सलाम को दो बड़े मिरेकल्स दिए थे, खुली आंखों से दिखते थे। यदे बैसा ब्राइट हैंड था, जैसे ये हाथ है ना, तो मूसा अलैहिस्सलाम यूँ करते थे, अल्लाह के हुक्म से बगल से जब वापस लाते तो बिल्कुल क्रिस्टल की तरह चमकता था। मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में जादूगरी का बहुत रिवाज था, तो वो मौजज़ा भी कुछ इसी किस्म का दे दिया। इसी तरह मूसा के हाथ में एक स्टिक होती थी, जब उसको ज़मीन पर फेंकते तो वो सांप बन जाता। यानी उसमें फियर था और यदे बैजा में होप थी। अलीमान बैन अल खौफ व रजा, यानी दावा के अंदर कभी डराओ कभी हंसाओ, कभी दिल खौफ से डरने लगे और कभी उम्मीद से डर मोहब्बत आने लगे। बैलेंस एटीट्यूड होना चाहिए। ये नहीं कि सिर्फ डराते रहो, और ये भी नहीं कि बिल्कुल ही उनको तसल्ली देते रहो। ये एक छोटी सी साइड की बात है। अब हुआ क्या? कौन कर रहा है ये तबलीग? मूसा। किसकी गाइडलाइन है? अल्लाह की। लेकिन जब दिल में बड़ाई होती है, बड़ी ही सॉफ्ट बात है। इधर वक्त का पैगंबर वही इलाही की रोशनी में तबलीग कर रहा है। क्योंकि आज हम कहते हैं ना, ये मौलवियों को करनी नहीं आती तबलीग, ये गुस्सा बड़ा करते हैं, ये बड़ी सख्त ज़ुबान बोलते हैं, इसलिए हम नहीं मानेंगे। गलत है। मूसा कितनी प्यारी बात कर रहे होंगे, लेकिन फकज़बा, मगर उसने झुटला दिया। और क्या किया? फकज़बा व असा, और नाफरमानी की। सुम्मा दोबारा यसा, फिर पुश्त फेर कर भाग गया, पीछे चला गया। फहशर फनादा, फिर जमा किया लोगों को और पुकारा। फकाला ना रब्बुकुम अला, कहने लगा मैं तुम्हारा रब्बे आला हूँ। ये है असल बात। ज़रा से इस जुमले पे आप गौर करें, मैं चंद बातें कहना चाहूँगी इस पे। फिरौन को वाकई अल्लाह ने बहुत कुछ दिया था। कहते हैं कि उसकी सारी ज़िंदगी शायद 200-300 साल की उम्र थी, एक दफ़ा भी सर दर्द नहीं हुआ उसको। अगर हो जाता ना तो वो मान जाता कि मेरे ऊपर भी कोई हस्ती है जो मुझे बीमार कर सकती है और मैं उसके आगे डरूं झुकूं। अल्लाह ने उसको हर चीज़ दी। इतना बड़ा बना कि उसने कहा मैं तुम्हारा खुदा हूँ। अब आप इस जुमले पे गौर कीजिए, अना रब्बुकुम, आई एम योर, अना रब्बुकुमुल आला, सबसे बड़ा खुदा मैं हूँ। वो जुमला जो फिरौन ने तो बोला, किसी बलबूते पे बोला ना, इतना कुछ था उसके पास तो बोल दिया। आज हमारा नफ्स यही जुमला बोलता है। याद रखिए, आज के मुसलमान का सबसे बड़ा बुत उसका नफ्स है। हर बंदा अपने नफ्स के आगे मजबूर है। कोई दुनिया की ताकत आपको मुझे अल्लाह से दूर नहीं कर सकती, लेकिन इंसान का नफ्स जब मोटा होता तो उसको दुनिया में कोई इज्जत मिलने लगती है। चार पैसे आ गए, शोहरत आ गई, खाना मिल गया, अल्लाह ने कुछ औलाद अच्छी घरों में डाल दी, कहते हैं बस सब कुछ जो किया जी खुद किया, बहुत मेहनत करते हैं। नहीं, हमेशा आजजी रखें, क्योंकि अल्लाह ने इतने बड़े फिरौन के इस जुमले को सुनकर क्या किया, फ़ाख़ज़हुल्लाहु नकाल अल आखिरति वल उला, बस अल्लाह ने उसको बना दिया इबरत। किस चीज़ में? दुनिया और आखिरत में। पकड़ लिया, यानी अल्लाह ने इस तकब्बुर से भरे जुमले पे उसको पकड़ा। और इन नफी ज़ालिका लइबरत लिमन यख्शा, यकीनन इसमें इबरत है उस शख्स के लिए जो डरना चाहे। मेरे आपके लिए इसमें क्या इबरत है? इबरत ये है कि कभी बड़े ना बने। देखिए, अल्लाह को, अल्लाह ही बड़ा है, अलमुतकब्बिर है वो, उसको हक है वो बड़ा बने, उसकी शान है, उसका सब कुछ है। आप मैं तो छोटे बन के रहेंगे तो बात बनेगी। तो तकब्बुर नहीं करना चाहिए, खुद को बड़ा नहीं समझना चाहिए। दुनिया में कोई नेमत मिले, कह दे अल्लाह का एहसान है, हाज़ा मिन फज़ले रब्बी, माशाल्लाह, ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्ला। ये सारे जुमले एक मुसलमान के दिल की पुकार होते हैं। तो बड़ा नहीं बनना चाहिए। आप देखिए कि अब अगली आयतों में कायनात पे थोड़ा सा गौर व फिक्र है। अंतुम अशद्दु खल्कन अम अस्समाउ बनाहा, क्या तुम ज्यादा सख्त हो, यानी तुम्हारी तख्लीक ज्यादा बड़ा काम है, या इस आसमान की जिसको हमने बनाया। सोचिए आप जरा कितना बड़ा आसमान है। और 100 साल पुरानी बिल्डिंग के नीचे जाते हैं तो खौफ आता है गलियों से गुजरते हुए कि कुछ हाथी ना गिरे। क्या आपको मुझे इस आसमान के नीचे से गुजरते हुए कभी खौफ आया? पुराना है, गिर ना जाए, टूट ना जाए। अल्लाह की कायनात एवर न्यू है, इतने बड़े आसमान को बना दिया, क्या उसके लिए मुझे आपको दोबारा बनाना मुश्किल है? बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है। अल्लाह ताला कहते हैं कि तुम मेरी कुदरत को पहचानो, रफा सम कहा फसवाहा, उसने उस आसमान की मोटाई बनाई और उसको फिर सीधा किया। संक कहते हैं ऊंचाई को, जैसे आप नीचे खड़े होकर ऊपर देखें ना तो वो थिकनेस लंबे रुख में जो होती है, ऊपर खड़े होकर नीचे देखें तो अमका, और नीचे खड़े होकर ऊपर देखें तो समका। ऐसी 2-3 दिन पहले एक आयत मेरे सामने गुजरी तो मैं उसमें एक हदीस पढ़ रही थी कि 7 आसमान हैं ऊपर, 7 हेवन सब जानते हैं, कैसे हैं? बस मैंने तो थोड़ा सा पढ़ के बंद कर दिया, क्योंकि मेरे इमेजिनेशन से बहुत बड़ी चीज़ थी। आपको तो एक पूरा आसमान याकूत का है, नीलम का है, एक एक पर्ल्स का है। ये 7 हेवंस, नबी सल्लम जो मेराज के मौके पे गए थे, और सूरत नजम की तफसीर में आपको बहुत कुछ मिलेगा। इतने हसीन है ऊपर आसमान, मोती चांदी सोने जड़ाओ जेवरात, हम कितना कुछ जेवर पहन सकते हैं, और कितना कुछ में गोल्ड होगा, और कितने कुछ में स्टोन्स होंगे। पूरा आसमान ऊपर मोतियों और हीरों से पता नहीं किस किस से बना हुआ है। और मोमिन की मौत के वक्त इसलिए भी वो बड़ा खुश होता है कि मैं सैर करूँगा। दुनिया में तो हम सिर्फ आसमान से नीचे ही फिर सकते हैं ना, मौत के बाद ऊपर जाते हैं। अल्लाह कहते हैं, कभी सोचा तुमने इतना बड़ा आसमान मैंने बना दिया, और कैसे बना दिया? वक्त शलैलहा वखरज दुहाहा, और उसने रात ढांकी और उसका दिन निकाला। फिर देखिए दिन रात की बात है, कितनी बड़ी बात है, कितनी बड़ी चेंज है। देखिए सुबह जब आप घर से निकले होंगे काम पे, रोशनी थी ना, ये रात कैसे हो गई बाहर? ये किसने किया? मैं और आप अगर ये बल्ब ना बंद करें, ये अगर चलाए ना, तो कभी रोशनी और अंधेरा ना हो सके। बैठे हैं तो ऐसे ही जलती रहेगी। लेकिन अल्लाह की ज़ात कैसे हर 7-8 घंटों के बाद ऐसे खूबसूरत रिमोट सिस्टम के साथ ये चेंजेस ला रहा है, ये आखिर क्या है? ये उसकी कुदरत की बातें हैं। वलर्द अबादा ज़ालिका दहाहा, और उसने ज़मीन को उसके बाद बिछा दिया। दहा कहते हैं ओवल को। इस आयत के इस लफ्ज़ से पता चला दुनिया को पहली बार कि ज़मीन गोल नहीं है, बैजवी है। शुतुरमुर्ग का जो अंडा होता है ना, उसके लिए ये लफ्ज़ आता है दहा। और बात जब लोग कहते थे दुनिया गोल है, कितना मशहूर मुहावरा भी है, लेकिन आज पता चला गोल नहीं है, वो बैजवी है, इस तरह घूमती है। कुरान में देखिए 1400 साल पहले ये लफ्ज़ आ गया। अखरज मिनहा माअहा व मरआहा, इसके अंदर से इसका पानी और चारा निकाला। आप कहेंगे ये क्या बातें में दिखाई जा रही हैं? नहीं, ये बहुत बड़ी बातें हैं। मट्टी का दामन चीर कर एक छोटी सी कोंपल उसमें से निकलती है। क्या ये कोई छोटा वाक्य है? मैं हैरान होती हूँ कि अल्लाह ने चारों तरफ गौर व फिक्र और तदब्बुर की बातें लिखी हुई, लेकिन हम आप गौर कम कर पाते हैं। आदत नहीं है, क्योंकि उस वक़्त भी हम फ़ोन पे बातें कर रहे होते हैं, जहन में तफक्कुरात होते हैं, जहन में सारे दिन में करना क्या वो प्लान है, देखते नहीं है कि बाहर पत्तों के रंग कैसे बदले हैं। इतनी बड़ी बड़ी चेंजेस जो जात कर रही है, क्या मैं और आप उसके हुक्म को मानकर अगर कोई फैसला करते हैं तो क्या वो ज्यादती का होगा? क्या वो हमारा हक मारेगा? का सिर्फ ये नहीं, वल जिबाल अरसाहा, पहाड़ भी गाड़ दिए उसमें। पहाड़ों को एक जैसे रस्सियों के साथ बांधा जाता है इस जमीन के ऊपर, अल्लाह ने पहाड़ों की मेखें रख दी। और ये सब बना के क्या कहा? मतालकुम वली अनामिकुम, तुम्हारे लिए भी फायदा है और तुम्हारे मवेशियों के लिए भी है। कभी घास पे चल के देखें कितनी नरम है और हमारा वजन कितना है, और उस पे पाँव रख के आगे जाएं फिर सीधा हो जाएगा। कभी आपने देखा घास नहीं टूटती? मैं अक्सर जब भी वॉक करूं तो मैं ये सोचती हूँ कि इतनी नरम है इसीलिए नहीं टूटती, वरना जिधर से बंदा गुजरे साथ घास भी टूट गई। अल्लाह ने इसको इतना फ्लेक्सिबल बनाया। चलिए ये तो थी बातें, अब आखिरी बातें जो असल में लेकर यहाँ से उठना। मैंने आपने ये तो कायनात है, ये तो रब्बे कायनात है, ये तो खूबसूरतियाँ हैं इस दुनिया की। गौर व फिक्र करो, तदब्बुर करो, अपने बच्चों को इस कायनात से जोड़ो। छोटे छोटे बच्चों को आसमान के नीचे ले जाकर दिखाओ सूरज चांद सितारे, ज़मीन पर दिखाओ देखो मट्टी फूल। जब ये सारा कुछ वो कर रहा है, तब देखो जब क़यामत आएगी तो क्या होगा। फैजा जाते तामतुल कुबरा, फिर जब वो हंगामे अजीम बरपा होगा। क्यामत का नाम है तामा, बहुत सारे नाम इस बारे में जमा हो जाएंगे, अगर आप लिखेंगे तो मेरे ख्याल 20 से 25 नाम है सिर्फ 30वें बारे में क्यामत के। और जब वो बड़ी क्यामत आएगी, और तामा का लफ्ज़ जो है ना क्या है, बहुत बड़ी, और कुबरा उससे भी बड़ी, यानी ये कुछ छोटा जलजला नहीं होगा, ये बहुत बड़ा जलजला होगा। यौम यतज़क्करुल इंसानु मासा, इस पे तो मैं 3 सेकंड चुप रहूंगी। उस रोज इंसान अपना सब किया धरा याद करेगा। जैसे ग्रेजुएशन डे पे दूसरों को डिग्रीज और डिप्लोमास मिलता देखकर, वो स्टूडेंट जिसने वक्त ज़ाया किया, मेहनत ना की, केयरलेसनेस की, वो हसरत का शिकार होता है। उस दिन इंसान के सामने वो सब कुछ आ जाएगा जो उसने किया होगा। वबुर्रिज़तिल जहीमु लिमन यरा, और जहन्नुम सामने पेश कर दी जाएगी हर देखने वाले के। हदीस में आता है कि क़यामत के मैदान में अल्लाह ताला जहन्नुम को ऐसे लेकर आएंगे। कैसे होगा? हमारा ईमान है। जैसे घोड़े को नुकेले डाल कर लेकर आते हैं, जहन्नुम को लाया जाएगा। और हदीस में यहाँ तक आता है कि जहन्नुम उसी भूखी होगी। सूरत काफ में आप पढ़ें, अभी भी जाके हर रोज़ खाना मांगती है, अल्लाह उसमें डाल के पूछते हैं हल भी मज़ीद, डू यू वॉन्ट मोर? कहती है यस नो प्रॉब्लम, अगर हैं तो डाल दें। कौन जाएगा जहन्नुम में? आप ना डरें, जहन्नुम में कौन जाएगा? नंबर 1, फम्मा मन तगा, बस वो जिसने सरकशी की। सरकशी का मतलब यह है कि जो भी आप अपने बच्चे से कहें करो, वो उसका अपोजिट करें। ज़रा सोचिए, 7-8 साल का बच्चा, आप जो कहती हैं वो उसका अपोजिट करें, क्या गुस्सा आता है? और जो फिर हम उनको ताने देंगे, खिलाया पिलाया पढ़ाया, इतनी मेहनत की, तुम्हें इतने महंगे स्कूल में भेज रहे हैं ये सीख के आ रहे हो, और तुमने मेहनतें ज़ाया कर दी और मेरा नाम डुबो दिया। अल्लाह की नेमतें मेरे ऊपर कितनी है और मैं अपने बच्चों पे क्या लगा रही हूँ? अल्लाह ताला कहते फम्मा मन तगा, देखिए अल्लाह को जो चीज़ गवारा नहीं है ना, वो सरकशी नहीं गवारा। ये तो सीधी सी बगावत है, अल्लाह को ये एटीट्यूड पसंद नहीं है। और अल्लाह क्या कहते हैं हमें? कोई मुश्किल काम कहता है? 5 ही नमाजें हैं ना, कोई लंबी चौड़ी तो नहीं है। कल ही पढ़ाया वाकया मेराज, 50 ही होती तो क्या बनता? आपको पता, शुरू में 50 नमाजें थी। आज एक स्टूडेंट ने सवाल किया कि ये बात कुछ समझ में नहीं आ रही, अल्लाह का तो पहले ही पता था ना कि 5 ही करनी है, तो शुरू में 50 क्यों कह दी? तो फिर मैंने उनको समझाया कि 50 इसलिए बोली कि बाद में 5 पढ़ो तो सवाब तुम्हें 50 का हो। मेराज के तोहफों में एक 5 नमाजें थी, और साथ ही हर नेकी का कम से कम दर्जा 10 गुना। बात समझे? अब आप अगर 5 नमाजें पढ़ते हैं तो आपको 50 का अजर मिलता है। कितनी खूबी की बात है। फिर उनको बात समझ आ गई। अब सिर्फ 5 नमाजें हैं, नहीं दिल करता पढ़ने को, है ही नहीं वक्त। उस वक्त खुद से पूछिए, अगर 50 होती फिर क्या करती? 50 नमाजें पढ़नी पड़ती हैं, और रातों को भी उठ उठ के पढ़ते। तो शुक्र नहीं करता इंसान के सिर्फ 5 है। दूसरी चीज़, ज़कात। कितनी देते हैं? 100 पैसे ढाई, 2.5%, तो 97.5 किधर है? ये भी तो हो सकता था ना, 2.5 तुम रख लो तो 97.5 जमा कराओ। गवर्नमेंट कितना टैक्स लेती है? मेरा ले रोने रोना निकल जाएगा। 40-50% टैक्स कमाए हम पैसे बोले। अल्लाह कहता है मैंने तुमसे क्या मांगा, और आज भी आपको दुख होगा सुनकर, शायद 10% से लेस मुस्लिम्स ज़कात देते हैं। तो ये अल्लाह को सरकशियाँ नहीं पसंद, पहली बात। वजह, अब सवाल है आपका अपने आप से, क्यों क्यों मुश्किल लगता है अल्लाह के हुक्म को मानना? बाकी हम कितनी हम बात ही नहीं कर रहे, ये तो सिर्फ बेसिक्स हैं। उसकी वजह, वासरल हयात दुनिया, और उसने दुनिया की ज़िंदगी को इख्तियार किया। ये है असल में सबसे बड़ी प्रॉब्लम। प्रायोरिटी दुनिया थी, हिट लिस्ट दुनिया थी, दिल दिमाग पे दुनिया छा रही थी। तो याद रखिए कि दुनिया से मोहब्बत करनी है, लेकिन वो मोहब्बत जो आखरत को पीछे डाल दे और अल्लाह के हुक्मों को पीछे डाल दे, वो नहीं करनी। फरमाया ये दो काम कर लो, तीन नहीं है, दो काम है, दो काम कर लो। फ़इन्नल जहीम हियल मावा, जहन्नुम में वो जाएंगे। तो आपके मेरे लिए चेकलिस्ट के ये दो नुक्ते हैं। अभी मेरे अंदर सरकशी तो नहीं है, अल्लाह का वाज़े हुक्म सुनकर मैं नो तो नहीं करती, और दूसरी, दीन और दुनिया के मामले में प्रायोरिटाइज किसको किया हुआ है? व्हाट इज माय प्रायोरिटी, प्रायोरिटी पे क्या है? अब इसके बाद जन्नत में कौन जाएगा? वाम्मा मन खाफ मकाम रब्बिही व नहन नफ्सा अनिल हवा, बस जो कोई रब के सामने खड़ा होने से डर गया, व नहन नफ्सा अनिल हवा, और नफ्स को ख्वाहिशात से रोक लिया, कंट्रोल कर लिया अपनी डिजायर्स, फाइनल जन्नत ही अल मावा, बस जन्नत ही उसका ठिकाना है। कितना आसान है कहने को, लेकिन हकीकत है कि ये दो आयतें बस, ये है असल में ज़िंदगी का सबसे बड़ा मुश्किल इम्तिहान। पसीना आ जाता है इंसान को। नफ्स ऐसे कुश्ती करता है बंदे के साथ जैसे शायद कोई पहलवान भी ना करता हो, और जिसने अपने नफ्स को दबा दिया उसका क्या है? किसी की बड़ी खूबसूरत बात है, उन्होंने कहा कि तुम्हें पता है जन्नत कितनी दूर है? 2 कदम पे। कहाँ? का पहला कदम अपने अपनी ख्वाहिश नफ्स पे रखो तो दूसरा कदम जन्नत में। आज इस नफ्स को ही प्रवोक किया जाता है। आज पूरी दुनिया का लाइफस्टाइल, मत कहिए कि ये नॉर्वे की बात है, यूरोप की बात है, अमेरिका की, कनाडा की, मीडिया ने सारे फ़र्क मिटा दिए। पाकिस्तान के गांव में रहने वाले का भी आज एक ही प्रॉब्लम है, और वो क्या है? ख्वाहिश नफ्स, डिज़ायर्स। देखिए नीड्स कितनी को है, असल तो वांट्स हैं। क्या बेसिक नीड्स नहीं पूरी होती हैं एक बंदे की? लेकिन क्यों नाफरमानी से रिस्क कमाता है इंसान? क्योंकि वांट्स चाहिए। और ये भी याद रखिए, इस्लाम आपको मुझे बिल्कुल सब छोड़ने की दावत नहीं देता। बस ये कह लीजिए कुछ इधर बाकी उधर। मैं एक छोटी सी मिसाल देती हूँ, शायद बात समझा सकूँ। आप देखिए कि आप ट्रैवल कर रहे थे, आपको कोई बहुत खूबसूरत चीज़ पसंद आ गई उधर। अब आप अपने साथ तो नहीं लेके जा सकते ना, क्योंकि आपका लगेज इतना नहीं है अलाउड। आप क्या कहते हैं? ओके, आई विल टेक दिस विद मी, बाकी इसको डिलीवर करा दो। बात वाज़े? इस दुनिया में भी यही करना है। इस दुनिया में जितनी ज़रूरत है, खाएं, पहने, ओढ़ें, घर लें, दुनिया की हर जायज़ चीज़ करें। अगर आप कमाते हैं लाखों में खर्च करें, करोड़ों में कमाते हैं करोड़ों में खर्च करें, बस साल के बाद जमा हो गया उसमें 2.5 निकाल दें, उसके बाद किसी शख्स को, किसी औरत को इजाज़त नहीं है कि आप पे तनकीद करें। क्या फजूल खर्च है, आप बहुत पैसे लगा रही हैं। अल्लाह मना नहीं करता, वल्लाह ही नहीं करता, बट प्रॉब्लम क्या होता है? दुनिया की चीज़ों से इंसान के अंदर लेजीनेस आने लगती है। इस पे कंट्रोल कीजिए। अल्लाह ताला हमें अपना खौफ दे दे। फाइनल जन्नत ही अल मावा, और फिर जन्नत है उसकी मावा ठिकाना। और यस सलू न कने सात या न मुरसाह, यकीन ही नहीं आ रहा इनको, ये बार बार आके अल्लाह के नबी से पूछते थे, अच्छा वो क्यामत कब आ रही है बाय द वे, कितने दिन रह गए हैं। मजाक करते थे, कहते थे ये लोग ऐसे ही कहते हैं। कहा वो कब आएगी, अल्लाह ताला डांट के अंदाज में कहते हैं, फी मानता मिन जिक्राहा, तुम्हें उसके जिक्र से क्या लगे। जैसी है जैसे बच्चा यही पूछता रहे कि इम्तिहान कब है, इम्तिहान कब है, कौन सा पेपर आना है, कौन सा सवाल आना है, तो टीचर डांटेगा ना कि तुम जाके पढ़ो, तुम्हें क्या लगे कब होगा, जब होगा बता देंगे। कहा इला रब्बी का मुंतहा हा, तुम्हारे रब की तरफ इसकी मुंतहा है, और इन नमान तमुनज़िरु मैं यख्शा हा, और आप तो सिर्फ खबरदार करने वाले उस शख्स को जो अल्लाह का खौफ रखता है। हर कुरान सुनने वाले को फ़ायदा नहीं होता, ये खतरे की बात है। इस कुरान से फ़ायदा लेने की प्री रिक्विजिट, शर्त कह लें, कंडीशन, जो आजजी के साथ सुने और उसके बाद खशियत लेकर आए, वरना याद रखिए लोग रिबेलियस हो जाते हैं, कुरान सुन के और सुन हो जाते हैं। और फिर एक इसका बड़ा आसान तरीका, मत सुनो, झूके सुन लिया है अमल करना पड़ेगा, मत सुनो। तो मैं आपसे ही पूछती हूँ, अगर आप इस खौफ से कि गाड़ी चलाई तो एक्सीडेंट होगा तो गाड़ी ना चलाऊँ, काम चलता? आप अपने बच्चे को स्कूल भेजते हैं, हम कहते हैं हाँ इसको इतना पढ़ना पड़ेगा बेचारा, हम छोटा सा बच्चा है और फिर बड़ा हो रहा है इतना, मैं नहीं इसको पढ़ाती, गुजारा नहीं होता ना। ज़िंदगी में चैलेंजेस को कबूल करना है इंशाल्लाह। और रह गई मेरी आपकी दुनिया, आखिरी आयत है, कहा ये दुनिया जिसकी मोहब्बत में रब को पीछे डालते हो, का नहुम यौम यरौनहा लम यलबसु इल्ला शिय्यतन अव दुहाहा, जिस रोज़ ये लोग इसे देख लेंगे तो इन्हें महसूस होगा कि ये दुनिया या हालत मौत में बस एक दिन के पिछले पहर या अगले पहर तक ठहरे हैं। क्या पता चला, आखिरत के मुकाबले में ये दुनिया ऐसे ही जैसे एक दिन, यानी जब इतनी छोटी दुनिया है तो क्यों ना रब की मान लें। देखिए इसको अपने ऊपर लीजिए, अभी आपको तिलावत सुनाते हैं, उससे पहले ज़रा सा अपने जहन को इसके साथ लें। आपको एक ऑफ़र आए गवर्नमेंट की तरफ से, आ जाए, आप एक दिन जॉब कर लें साल में, उसके बाद 364 डेज आपको घर बैठे पे मिलेगी, कितने लोग हैं जो उस जॉब को एक्सेप्ट नहीं करेंगे? करेंगे ना। और साथ ही उसमें और भी बहुत सारी बातें कि हाँ इसे एक दिन में बस आप ये नहीं कर सकते, वो नहीं कर सकते, बट फिर उसके बाद 364 डेज फ्री हैं। ये दुनिया आखिरत के मुकाबले में ऐसी है। अब जो थोड़ी बात सुनी है ना, आप तिलावत की सूरत में इसको जज्ब करें।
बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।
والنازعات غرقا والناشطات نشطا والسابحات سبحا فالسابقات سبقا فالمدبرات أمرا يوم ترجف الراجفة تتبعها الرادفة قلوب يومئذ واجفة أبصارها خاشعة يقولون أئنا لمردودون في الحافرة أئذا كنا عظاما نخرة قالوا تلك إذا كرة خاسرة فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى اذهب إلى فرعون إنه طغى فقل هل لك إلى أن تزكى وأهديك إلى ربك فتخشى فأراه الآية الكبرى فكذب وعصى ثم أدبر يسعى فحشر فنادى فقال أنا ربكم الأعلى فأخذه الله نكال الآخرة والأولى إن في ذلك لعبرة لمن يخشى أأنتم أشد خلقا أم السماء بناها رفع سمكها فسواها وأغطش ليلها وأخرج ضحاها والأرض بعد ذلك دحاها أخرج منها ماءها ومرعاها والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الطامة الكبرى يوم يتذكر الإنسان ما سعى وبرزت الجحيم لمن يرى فأما من طغى وآثر الحياة الدنيا فإن الجحيم هي المأوى وأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى يسألونك عن الساعة أيان مرساها فيما أنت من ذكراها إلى ربك منتهاها إنما أنت منذر من يخشاها كأنهم يوم يرونها لم يلبثوا إلا عشية أو ضحاها.
کتنی بڑی حقیقت ایک ہمارے سر پہ کھڑی ہے. صرف چند سیکنڈ کے اندر ہم سب کچھ جو ہمارے پاس ہے اس کو کھو دیں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں اس وقت کی قدر کی توفیق دے. پوری سورت میں سے اگر آپ اپنے لیے پوائنٹس جمع کر لیں جو آج ساتھ لے کر جانے ہیں تو وہ یہی ہیں, زندگی بہت قیمتی ہے, اس کی قدر کرنی ہے. اللہ نے ہمیں ایک بہت بڑے مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اپنے رب سے ملاقات کے لیے تیار رہیں. کسی لمحے بھی ہمارے جانے کا وقت آ جائے گا, چاہے ہم نے اپنا سامان پیک کیا ہے کہ نہیں کیا. جینے والوں کو جانے کی تیاری کرنی چاہیے, یہی حقیقت ہے. شروع میں آپ میں سے کسی سسٹر نے پوچھا تھا موت سے ڈر لگتا ہے. دیکھیے یہ ڈر کب ختم ہوگا, جب تیاری کر رہے ہیں. اللہ کی رحمت بہت پیاری ہے, اور یاد رکھے اللہ نے ہمیں آگ میں ڈالنے کے لیے نہیں پیدا کیا, اور اللہ نے اس دنیا میں ہم پر کوئی ایسی پابندی نہیں لگائی جو ہم برداشت نہیں کر سکتے. لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها. آپ اپنے بچے پہ ایسا بوجھ ڈالتی ہیں جو وہ نہ کر سکے؟ یعنی چار سال کا بچہ, آپ اس کو 5 کلو گھی کا ڈبہ کہیں گے پکڑ کے لے کے آؤ کچن میں؟ نہیں کہیں گے آپ, کیونکہ وہ ابھی چھوٹا ہے. تو ماں کو اتنا پیار ہے تو رب تو وہ کون ہے کہ وکان اللہ شاکرن علیما. آپ کو اپنے وہی بچے اچھے لگتے ہیں جو کوشش کرتے ہیں, چھوٹے چھوٹے ہاتھوں سے وہ کام کر رہے ہوتے ہیں لیکن ان سے ہو نہیں رہا ہوتا. آپ کہتے ہیں لاؤ میرا بچہ میں کر دیتی ہوں, میں بس دیکھ رہی تھی تم میرے کہنے پہ آتے ہو کہ نہیں. اللہ نے میرے آپ سے یہی دیکھنا ہے, نہ ہماری نمازیں اس قابل ہیں, نہ ہماری عبادات, نہ معاملات, لیکن دل میں اللہ کا خوف رکھ کے جئیں اور دعا کریں کہ اللہ بس اس زندگی میں ہمیں اتنی برکت دے دے کہ ہم اپنی دنیا کے کاموں کو بھی لیں اور ساتھ ہی ساتھ تیرے بھی حقوق جو ہیں, تیری بھی جو عائد کردہ چیزیں ان کو پورا کریں. جس دن جب وقت چھوٹا سا بھی ٹکڑا ملے نا, اس کو ضائع نہ کریں, کیونکہ زندگی بہت قیمتی ہے. آپ کسی بہت خوبصورت جگہ پہ گئے ہوں, مہنگا پیکج خرید کے, مثال ہے, چلے مثال دیتی ہوں, نیاگرا فال دیکھنے گئے ہیں, یہاں سے گئے, کتنا سفر کیا, کتنا آگے بکنگز کرائیں, اور گئے بھی 3 دن کے لیے ہیں, اور جا کے سو جائیں تو میاں صاحب نے کان سے پکڑنا, یہ سونے آئی تھی تم, چلو باہر. تو بس یہ دنیا کام کی جگہ, وہ دنیا آرام کی جگہ. اللہ تعالیٰ ہمیں قبر کا سکون دے. حدیث میں آتا ہے کہ قبر میں جانے کے بعد مومن کو تھوڑے سے معمولی سے حساب کتاب کے بعد ایک پکار سنائی دی جاتی ہے, نم کنو متل روز, اب سو جاؤ جیسے دلہن سوتی ہے, کیونکہ اللہ کو پتا یہ بہت سارے کام کر کے آیا ہے. تو اللہ تعالیٰ ہمیں کام والا بنا دے. جزاک اللہ خیر. سبحانک اللہم وبحمدک, اشہد ان لا الہ الا انت, استغفرک و اتوب الیک.